तो भाई जो भी अभी तो समय पर रहना चाहिए उसको, उनको बोले जाकर बुला के था उसको, उनको बोले बुला के था उसको।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तेरा वनचारी, जमुना जमुना तेरा वनचारी, जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा किल प्रभुपदा,
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोपनिषद
शिष्य मद भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिपुराजकाचार्य अष्टोत्तरिषद शिष्य मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आज रामनवमी का अवसर है, इसलिए श्रीमद्भागवतम के नवे स्कंद से श्लोक पढ़ेंगे और भगवान राम के चरित्र पर चर्चा करेंगे। कृपया दोहराइए। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरेः राम लक्ष्मण भरतः शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरेः रामलक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरेः रामलक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया
Thank you.
महाराज दशरथ के अपि भी भगवान भगवान एष वे सभी साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्ममय परब्रह्म या परम सत्य हरि ही भगवान अंशमशेन पूर्ण अंश के अंश से चतुर्धा चार प्रकार के विस्तार अगात स्वीकार किया पुत्रत्वं पुत्र बनना प्रार्थितः प्रार्थना किए जाने पर सुरेह देवताओं के द्वारा राम भगवान रामचंद्र लक्ष्मण लक्ष्मण भरत भरत शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न इति इस प्रकार संज्ञया विभिन्न नामों से अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में चार स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य, भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही हैं किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान हैं, यथा राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं, और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली हैं। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शिला चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो रामचंद्र जी की कथा को कहने से पहले प्रणाम कर लेंगे, कृपया दोहराइए। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी, भगवान के भाई श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न, उनके परम मित्र श्री सुग्रीव और उनके परम भक्त श्री हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। रामनवमी का दिवस भगवान श्री राम को स्मरण करने का दिवस तो है ही, साथ ही साथ उनके जीवन से उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने का दिवस भी है। जब हम कोई उत्सव मनाते हैं तो हमें स्मरण करना चाहिए कि उस उत्सव से जुड़ी हुई लीलाओं को हम सुने, साथ ही साथ उनसे कुछ सीखें कि हम कैसे उनसे अपने भक्ति के जीवन में लाभ ले सकते हैं। जब तक हम भगवान की कथाओं से श्रवण करते हुए उन शिक्षाओं को न ग्रहण करें और उनको अपने जीवन में न उतारें, तब तक भगवान की कथा का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। वैसे भगवान की कथा अग्नि के समान है, अनजाने में भी हाथ डालें तो लाभ तो मिलेगा ही, जैसे अग्नि में अनजाने में भी हाथ डाल दें तो जल जाता है, इसी तरह भगवान की कथाएं हैं। अगर हम बिना किसी निर्देश के भी, बिना कुछ समझे भी केवल उसको श्रवण कर लेते हैं तो भगवान के कथा का महत्व या कथा की शक्ति इतनी है कि फिर भी वो लाभ देती है, लेकिन वो पूर्ण लाभ नहीं होता। पूर्ण लाभ तब होगा जब हम कथाओं को सुने, कथाओं में रुचि उत्पन्न करें, कथाओं से उपदेशों को, निर्देशों को ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन बदलें। भक्तों के रूप में हम सबको ये जान लेना चाहिए कि कभी भी ऐसा समय नहीं आता जहां हमें अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कभी ऐसा समय नहीं आता कि अब भक्ति में पूर्णता हो गई। भक्ति ऐसी है कि हर स्तर हर क्षण बढ़ती रहती है, भक्ति के गुण, भक्ति का आनंद, और इसीलिए हमें हर स्तर पर सीखना होता है, हर स्तर पर हमें भगवान की भक्ति के लिए अपने को बदलने का प्रयास करना होता है। हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हम भक्त हो गए, हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, हम नियम पालन कर रहे हैं बस, और कुछ आवश्यकता नहीं है। हर क्षण हर रोज अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। बदलाव कृष्ण भक्ति के अनुकूल, हर व्यक्ति को, हर भक्त को ये जान लेना चाहिए कि अगर हम हर क्षण अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा भौतिक जीवन हमें फिर से पीछे खींच लेगा। और यही संघर्ष है जिसका वर्णन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण करते हैं, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हम सब संघर्ष कर रहे हैं। क्या संघर्ष है हमारा? अपने आप को बदलने का, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी चेतना को, जो इस समय आवृत्त है। आवृत्तम ज्ञानमेतेना, हमारा ज्ञान इस समय आवृत्त है, चेतना आवृत्त है, मन दूषित है, इंद्रियां अनियंत्रित हैं, और इन सब के रहते हुए हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए बदलाव चाहिए। हर क्षण अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए। हर क्षण अपने हृदय से इन कलमशों को निकालकर कृष्ण को लाने का प्रयास कीजिए। यह हर क्षण का, हर समय का हमारा संघर्ष है। और जहां हम इस संघर्ष में थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, माया प्रभावित कर देती है। चैतन्य चरितमृत में कहा है, माया कहीं दूर नहीं है, पास में ही बैठी है, निकटे, बहुत निकट है। और जैसे ही जीव कृष्ण से विमुख होता है तो वैसे ही झपट लेती है, झपटी अतारे पकड़ लेती है माया। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हर समय हमें भगवान के सम्मुख रहना है, भगवान से विमुख नहीं होना। जिस क्षण भी आप भगवान से विमुख होते हो, उसी क्षण माया पकड़ लेती है, माया तारे झपटी अधर। तो माया ऐसे है, तो कहीं दूर नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि अब हम लोग बहुत दूर आ गए हैं माया देवी से, माया के प्रभावों से बहुत दूर निकल आए हैं। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए भक्ति करते हुए, अब तो माया पता नहीं कहां रह गई, शुरुआत में होगी। नहीं, बहुत निकट है आज भी। इसीलिए हर क्षण बदलाव की आवश्यकता है, हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। और हृदय परिवर्तन होता है, ये बदलाव आता है जब हम जो सुने उसको केवल एक कथा नहीं माने, उसको केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं माने। साधारणतः जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो क्योंकि बाहर के मनोरंजन हम बंद कर देते हैं, जैसे हम सिनेमा नहीं देखते, गाने नहीं सुनते या बाहर कहीं जाते नहीं, तो फिर हम सोच लेते हैं कि ठीक है, उस मनोरंजन की जगह ये मनोरंजन कर लेते हैं। तो क्योंकि हम कहीं जा नहीं सकते, हमको देख नहीं सकते कोई सिनेमा इत्यादि, तो फिर हमें लगता है कि ठीक है, भागवत क्लास कम से कम यही मनोरंजन हो हमारा। वैसे एक दृष्टि से अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति अन्य मनोरंजन के अलावा अगर कृष्ण नाम में मनोरंजन ले रहा है। लेकिन हमें इसको केवल मनोरंजन नहीं मनाना चाहिए कि कथा सुनना, मंदिर आना, कीर्तन करना, ये एक मनोरंजन का साधन है बस। क्योंकि हम थक जाते हैं अपने अपने परिवार में, अपने अपने कार्य करते हुए या ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए, तो थोड़े बहुत मनोरंजन के लिए कीर्तन कर लिया, या थोड़े बहुत मनोरंजन के लिए कथा सुन ली, मंदिर से बाहर गए तो कुछ बदलाव नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में, अपने उन भक्तों के लिए जिन्होंने जीवन समर्पण कर दिया है कृष्ण के लिए, कि अगर मेरे अनुयायी इन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे जो मैंने इतने अनुवाद किए हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, वे केवल खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और भगवत धाम जाने का अवसर खो बैठेंगे। तो क्यों लिखा है ऐसा प्रभुपाद ने? क्या केवल मंदिर में रहना, क्या जप करना पूर्ण नहीं है? क्यों प्रभुपाद ने लिखा कि इन ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे तो केवल खाओगे, पियोगे, सोओगे और भगवत धाम जाने का अवसर खो बैठोगे? क्योंकि इन ग्रंथों को पढ़कर, उनको, उनके निर्देशों को, जैसे प्रभुपाद हर तात्पर्य में उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। उन संदेशों को अपने जीवन में जब उतारेंगे तब सही दृष्टि में ग्रंथ पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, भागवत सुनना, उत्सव मनाना हमारे लिए सफल होगा। अन्यथा रामनवमी, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी ये हमारे लिए मनोरंजन के अवसर हो जाएंगे। तो हाँ, इन अवसरों पर हम बाहर से जो लोग आते हैं, जो नए लोग हैं इत्यादि, उनके लिए एक मनोरंजन का अवसर दे देते हैं। जैसे एक कोई ड्रामा हो सकता है, अभिषेक होता है, कीर्तन होता है, तो बाहर वालों के लिए या जो लोग अभी भक्ति में पूर्ण रूप से जुड़े नहीं हैं उनके लिए एक मनोरंजन का साधन हम लोग प्रदान करते हैं। क्योंकि बाहर का मनोरंजन लेने से अच्छा भक्ति में आकर वो लें। लेकिन भक्तों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए अपने हृदय को बदलने के लिए, अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए। ये मत सोचिए कि जैसे मैं जी रहा हूँ, जैसे मैं रह रहा हूँ, ऐसे ही कृष्ण को मुझे लेकर जाना चाहिए अपने धाम। अगर नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं जैसा हूँ, जैसे मेरे गुण हैं, जैसा मेरा भाव है, जैसा मेरा हृदय है, इस हृदय से मैं भगवान के धाम जा नहीं सकता, कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं। ये भक्त का भाव है। हर क्षण उसको सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं कि जिससे मैं कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। इस भाव में रहेंगे तो हर क्षण अपने आप को आध्यात्मिक अवस्था में रख सकेंगे, अन्यथा माया में पड़ जाएंगे, बहुत जल्दी गिर जाएंगे। भक्ति में रहते हुए भी, भक्तों के साथ रहते हुए भी हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं। रामायण का बहुत सुंदर उदाहरण सीता देवी का है। सीता देवी श्री रामचंद्र जी के साथ हैं, भगवान के साथ हैं, लेकिन फिर भी इच्छा कर ली कि मुझे एक सोने का मृग चाहिए, वो जो सोने का मृग भाग रहा है उसको पकड़ लाइए। लक्ष्मण ने समझाया, भगवान ने कहा सोने का मृग होता नहीं है, लक्ष्मण ने भी कहा कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन सीता देवी ने कहा मुझे तो चाहिए। तो ये एक उदाहरण है हमारे लिए, रामायण उदाहरणों से भरी हुई है राम कथा। तो एक उदाहरण है कि सीता देवी भगवान के साथ रहते हुए भी जब उन्होंने कामना कर ली कोई और चीज की तो वो भी भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट हो गई। वैसे सीता देवी तो पथभ्रष्ट नहीं होती हैं भक्ति से, लेकिन उन्होंने उदाहरण हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया कि कैसे भक्ति करते हुए अगर हम कोई और चीज की कामना कर लेते हैं तो फिर रावण, रावण क्या है, इस जगत की कामनाएं, इस जगत का भोग, तो रावण आकर हमें हरण कर लेता है। भौतिक मानसिकता हमें हरण कर लेती है। कब? जब हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं। और वो रावण हमारे साथ में है। ऐसा मत सोचिए सीता देवी के लिए तो रावण आया था, हमारे लिए कहां रावण है। रावण हमारे ही साथ में इंतजार कर रहा है, कहां कृष्ण से विमुख हो, पकड़ लिया रावण ने। तो इसीलिए बड़ा सावधान भक्तों को रहना चाहिए। सीता देवी के उदाहरण से सीखें कि जब, तो ये क्यों उदाहरण दिया कि अगर वो भगवान के साथ रहते हुए कोई दूसरी कामना के कारण कष्ट में आ सकती हैं, वो भी सीता देवी, तो हम लोगों की क्या अवस्था है। इसीलिए हम भी भक्ति में हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के संग में हैं, फिर भी अगर कोई और इच्छा कर लेते हैं तो पथभ्रष्ट होना निश्चित है। तो रामायण हमें ये सिखलाती है कि कैसे हर क्षण हर अवस्था में हम केवल ये सोचें कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता, मैंने क्या किया और अब और क्या कर सकता। भक्त की ये चेतना होनी चाहिए। भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने समय भक्ति करके मुझे क्या प्राप्त हुआ। कभी कभी भक्तों के मन में आता है 15 साल, 20 साल, 30 साल, क्या प्राप्त हुआ, हृदय शुद्ध नहीं हो रहा, कामनाएं बनी हुई हैं। भक्त को चिंता करनी चाहिए कि मैंने क्या किया, मैंने कितना किया, क्या मैंने अपना पूर्ण सर्वस्व कृष्ण को अर्पण किया, क्या मैंने 100% अपनी चेतना अपना मन कृष्ण में लगाया। अगर नहीं तो हमें यह प्रश्न नहीं करना चाहिए कि 30 साल 40 साल 20 साल 10 साल की भक्ति से मुझे क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि भक्त यहां पर कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है, भक्त यहां देने के लिए है, अपना सर्वस्व कृष्ण को देने के लिए, अपनी सेवा कृष्ण को देने के लिए, अपनी चेतना कृष्ण में लगाने के लिए। तो हर चीज जो हमारे पास है हम यहां देने के लिए हैं, और देने वाले के मन में कभी यह भाव नहीं आना चाहिए कि मुझे क्या प्राप्त हुआ, यह सही भावना नहीं है, यह सही चेतना नहीं है। तो जहां हम भक्ति में ये सोचने लगते हैं कि मुझे क्या प्राप्त हुआ, इससे जीवन का बदलाव, चेतना का बदलाव, मन का बदलाव रुक जाता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस बदलाव को रोके नहीं, हर क्षण बदलने के लिए तैयार रहें, हर क्षण कृष्ण की ओर जाने के लिए जो भी बदलाव आवश्यक है उसको तैयार रहें स्वीकार करने के लिए। कम से कम हर क्षण भागवत क्लास में अपनी आंखें खुले रखने के लिए संघर्ष कर लेना चाहिए, हमें इतना संघर्ष तो करना चाहिए। हम वो भी बदलने के लिए तैयार नहीं। जय राधा माधव सुन होते ही हमारी आंखें बंद होती हैं, श्लोक तो जब पढ़ते हैं तो आह अमृत वाणी, वो तो एकदम ज्यादा आंखें बंद हो जाती हैं। इसीलिए बदलाव चाहिए, और रामायण का हर प्रसंग हर चरित्र हमें शिक्षा देता है। कोई चरित्र ले लीजिए रामायण का, मंथरा को ही ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि हमें केवल श्री रामचंद्र जी से सीखना है, सीता देवी से सीखना है, मंथरा को ले लीजिए। क्या क्या सीखते हैं मंथरा से? मंथरा से हम सीखते हैं कि नीम के पेड़ से शहद प्रकट नहीं होता, नीम का पेड़ नीम का ही रहेगा, नीम समझते हैं ना, नीम कड़वा होता, शहद मीठा होता, तो नीम के पेड़ से कभी शहद नहीं मिलता। अर्थात ऐसे संग से जो नीम का पेड़ है, कृष्ण भक्ति का शहद नहीं मिल सकता। कृष्ण भक्ति ये शहद की तरह है। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के ग्रंथों को, भगवद गीता को समझने का प्रयास कर रहा है लेकिन भक्तों के संग में नहीं है, तो इस तरह है कि वो शहद की बोतल को बाहर से चाटने का प्रयास कर रहा है, उसको वो स्वाद नहीं मिलता। तो भक्ति ये शहद की तरह है, लेकिन ये शहद नीम के पेड़ से नहीं आ सकता। ये शहद आता है उस स्थान से जहां पर वातावरण अनुकूल हो, भक्त हो, भक्ति हो, सही संग हो, उससे ये शहद प्रकट होता है। तो मंथरा से भी ये सीख सकते हैं कि कैसे बुरे संग से बचना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो कैकई जो केवल ये सुनने मात्र से कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा है, इतनी प्रसन्न हो गई कि अपने गले का मोतियों का हार निकालकर उसने मंथरा को दे दिया, कितनी अच्छी समाचार तुम लाई। लेकिन देखिए प्रभावित जब हुई कैकई, तो सब लोगों के कहने पर, कितने लोगों ने उसको समझाया, वशिष्ठ मुनि कुल गुरु हैं वो समझा रहे हैं, उनके पति समझा रहे हैं, अन्य लोग समझा रहे हैं, सुमंत्र समझा रहे हैं कि नाश कर रही हो, रुक जाओ, लेकिन कैकई नहीं रुकी, केवल संग के कारण। तो इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए हम किसका संग करें। इसी लिए हमने कहा कि भागवत को या कृष्ण कथा को, रामचंद्र जी की कथा को केवल मनोरंजन का साधन मत मानिए, बदलने के लिए तैयार रहिए अपने जीवन को। तो इस तरह रामायण का हर प्रसंग हमें ये समझाता है कि कैसे अगर हम इनकी कथा सुनते हैं, और कौन है भगवान? साक्षात ब्रह्ममयो हरि, वो कोई और नहीं है, साक्षात परब्रह्म है। तो साक्षात ब्रह्ममयो हरि, इनकी कथा को जब हम सुनते हैं, इनके उपदेशों को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित हमारे जीवन में इन शिक्षाओं से, इन कथाओं से, इन लीलाओं से हम अपने आप को बदल पाते हैं, अपने हृदय को, अपनी चेतना को बदल पाते हैं। इसीलिए आवश्यक है भगवान राम की लीलाओं को सुनना। तो जैसे हम वर्णन कर रहे थे कि अलग अलग चरित्र हैं, और हर चरित्र, चाहे मंथरा का हो, सुमित्रा का हो, कैकई का हो, शबरी का हो, कौशल्या का हो, उर्मिला का हो, हर चरित्र हमें शिक्षा प्रदान करता है। कोई ऐसा चरित्र नहीं है रामायण का जो हमें शिक्षा नहीं प्रदान करता हो, और कोई प्रसंग ऐसा नहीं है जो हमें कृष्ण की ओर ना ले जाता। इतने सुंदर प्रसंग हैं रामलीला के, रामायण के। तो ऐसे जो चरित्र हैं, जैसे हनुमान जी हैं, सीता देवी हैं, जटायु हैं, कितनी चीजें सीखते हैं हम इनसे। तो एक प्रसंग को अगर हम लोग ले लें और उससे देखें कि कैसे हम सीखते हैं, जैसे एक प्रसंग की चर्चा हम करना चाहेंगे आज, और वो है सीता देवी की खोज। बहुत सुंदर प्रसंग है कि कैसे जब सीता देवी की खोज करने के लिए अलग अलग दल पहुंचे, और विशेषतः हनुमान जी का दल जिसमें जांबवंत, अंगद इत्यादि थे, वे जब समुद्र के तट पर पहुंचे ढूंढते ढूंढते, तो कैसे, क्या भाव और क्या शिक्षाओं को वो देते हैं जब तक हनुमान जी सीता को ढूंढ लेते हैं। तो इस प्रसंग पर हम आज थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। और फिर आज रामनवमी का दिवस है, शाम के समय राम कथा के चरित्रों के महत्व को या उनसे क्या शिक्षा हम लोग लेते हैं, वो शाम को हम लोग श्रवण करेंगे। तो सीता देवी की खोज प्रारंभ हुई, ये संक्षेप में आप सब तो जानते हैं इस कथा को, कि कैसे रावण हरण करके ले गया सीता का, जटायु ने बड़ा प्रयास किया, बचा नहीं पाया, और फिर रामचंद्र जी ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के पास पहुँचे। सुग्रीव ने मित्रता की, वचन दिया, 4 महीने बीत गए जो कि चतुर्मास वर्षा का समय, और उसके बाद फिर खोज प्रारंभ हुई। सभी दिशाओं में दल भेजे गए, जाकर ढूंढी, और दक्षिण दिशा में भेजा गया हनुमान जी, जांबवंत, अंगद इत्यादि। तो ये लोग ढूंढते 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 अब समुद्र के तट पर आ गए, जहां भूमि समाप्त हो गई। तो अब ये सोचने लगे, अब आगे तो कुछ नहीं है, सीता नहीं मिलेंगी। तो फिर संपाति ने आकर जब संदेश दिया, तो उसके बाद का वर्णन हम करना चाहते हैं। वैसे जब इन प्रसंगों को कहते हैं, संपाति आए या खोज में गए, तो ऐसा कहो प्रतीत होता है कि हम अन्याय कर रहे हैं, उनका वर्णन नहीं हो रहा पूरा। लेकिन हर एक वर्णन करने जाएंगे तो फिर आप सबको शाम तक, रात तक, या पता नहीं अगले दिन तक बैठना पड़ेगा, और हम निश्चित जानते हैं कि आप उतना बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़े समय में आप में से कुछ लोग घड़ी की ओर देखना प्रारंभ कर देंगे। तो इसीलिए आप सब की प्रसन्नता के लिए बहुत थोड़े में कहेंगे। तो हनुमान जी अब तैयार हैं, तो सबसे पहला उपदेश या निर्देश हम हनुमान जी से लेते हैं, कि जब हनुमान जी अब तैयार हुए जाने के लिए, पहले तो उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। सब वानर कह रहे थे, ये 100 योजन है, मैं तो केवल इतना जा सकता हूँ, मैं इतना जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 10 योजन 15 योजन छलांग लगा सकता हूं, तो जाम्बवंत ने हनुमान जी से पूछा तुम कितना लगा सकते हो। हनुमान जी को पता ही नहीं था। हनुमान जी ने कहा पता नहीं, क्योंकि भूल गए थे ऋषि के श्राप से। तो उस समय का जो वर्णन है कि जब उन्होंने याद दिला दिया हनुमान जी को और हनुमान जी तैयार हो गए जाने के लिए, तो अब जो वर्णन है बड़ा सुंदर, अब से हम लोग वर्णन करेंगे कि कैसे क्या क्या हम सीख सकते हैं। तो पहली चीज हनुमान जी ने कहा, अब देखिए संपाति बता चुके थे कि सीता देवी वहां है, रामचंद्र जी को विश्वास था कि केवल हनुमान जी ही सीता को ढूंढ कर लाएंगे, इसीलिए अपनी मुद्रिका हनुमान जी को दी थी उन्होंने पहले ही। और अब हनुमान जी को भी पता था कि मैं सीता को ढूंढ लूंगा, क्योंकि संपाति ने बता दिया वहां पर है सीता, रावण ले गया है, जटायु ने भी यही कहा था। तो अब हनुमान जी ये जानते हैं कि मैं सीता देवी का पता लगा कर आऊंगा। तो जब कूदने लगे तो कूदने से पहले उन्होंने सभी अपने दल के साथियों से कहा आप में से कोई जाना नहीं, आप सब यहीं रहना, कोई यहां से जाएंगे नहीं जब तक मैं वापस नहीं आता। क्यों? इसलिए नहीं कि वो आकर अपना गुणगान करवाना चाहते थे, लेकिन इसलिए कि वो ये नहीं चाहते थे कि वो अकेले रामचंद्र जी के पास जाएं। Maybe you can stand up there. इसलिए कि वो ये नहीं चाहते थे कि वो अकेले रामचंद्र जी के पास जाएं और अकेले श्रेय लें। अगर मान लीजिए उनका जो सारा दल है वो चला जाता कि अब हनुमान जी चले गए, अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक, और जब हनुमान जी वापस आते तो अकेले हनुमान को श्रेय मिलता कि वह हनुमान ने ढूंढा, और हनुमान जी ये नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा रुकना, मैं जब वापस आऊंगा तब हम सब साथ में जाएंगे रामचंद्र जी के पास, ताकि बात यह हो कि जो दक्षिण में दल गया था उन्होंने सीता को ढूंढा, हनुमान जी ने नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण उपदेश हमें मिलता है, सबसे पहला नम्रता, कि हमें श्रेय लेने के पीछे भागना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अगर कोई सेवा कर रहे हैं, जैसे रामचंद्र जी की सेवा वो कर रहे थे, तो हम श्रेय लेने के लिए पीछे भागें कि मुझे श्रेय मिले, मैं करके दिखाऊं, बाकी किसी को नहीं मिले। नहीं, कभी भी भगवान की सेवा में श्रेय लेने का प्रयास नहीं करना। तुलसी रामायण में लिखा है कि भगवान उस व्यक्ति के हृदय में रहते हैं जो अपने सारे कार्यों का श्रेय भगवान को देता है, और अगर जिस कार्य में असफलता हो उसकी निंदा, उसका दोष अपने ऊपर लेता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान रहते हैं। इसीलिए श्रेय लेने का प्रयास नहीं करना है। तो हनुमान जी सबसे पहली बात ये सिखलाते हैं, और दूसरी बात हमें एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। जैसे आप लोग कभी कोई खेल देखते हैं तो खेल में मान लीजिए जैसे फुटबॉल का खेल होता है, तो फुटबॉल का खेल आप में से कितने लोगों ने देखा है, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा, कई लोग महान भक्त हैं जानते नहीं फुटबॉल क्या है। अच्छा है, वैसे ऐसे होना चाहिए। तो फुटबॉल में ऐसा होता है कि बॉल को दूसरे जो शत्रु पक्ष है उसके गोल में डालना होता है, तो वहां बटा होता है काम, एक होता है गोलकीपर, दूसरे होते हैं जो पीछे खेलते हैं वो आगे नहीं जाते, तीसरे होते हैं जो बीच में खेलते हैं, और चौथे प्रकार के खिलाड़ी होते हैं जो आगे खेलते हैं, बैकवर्ड्स मिडल एंड फॉरवर्ड, अदर अदर, सब पीछे खेलने वाले बीच के, तो जो जहां है वहीं तक खेलता है फिर गेंद आगे दे देता है। और देखिए जब गेंद होती है, जब खेल चलता है तो पीछे से गेंद लेकर चलते हैं, जो पीछे के खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा जाके बीच वालों को देते हैं, फिर बीच वाले थोड़ा आगे ले जाकर आगे वालों को देते हैं, और आगे वाले आगे जाकर गोल करते हैं। लेकिन जब वो गोल करते, गोल एक व्यक्ति करता है आगे जो खेल रहा है, लेकिन श्रेय सारी टीम को मिलता है,
श्रेय उस व्यक्ति को केवल नहीं मिलता, श्रेय सारी टीम को। हाँ, उसका गुणगान हो सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भारत जीत गया, हम देश को श्रेय देते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब साथ में चल रहा हो तो कैसे एक व्यक्ति यहां तक आकर उसने छोड़ दिया, फिर दूसरा लेकर गया, फिर तीसरा लेकर गया, तो ऐसे ये गेम चलता है। तो इसको कहते हैं कि दल एक साथ रहकर मिलकर करना। अगर मान लीजिए कि जो पीछे खेलने वाले हैं वो गेंद आगे ही नहीं दें, तो वो व्यक्ति आगे वाला गोल कैसे मारेगा? मार सकता है? आगे वाला को श्रेय मिलता है, लेकिन उसका श्रेय मिलने का कारण क्या है? पीछे से उन्होंने लाकर गेंद दी है। अगर पीछे से ला नहीं पाए, शत्रु पक्ष वाले पहले ही ले जाएं, तब क्या होगा? ये जानना चाहिए। और एक उदाहरण देते हैं, आप वो फायर ब्रिगेड जानते हैं, तो फायर ब्रिगेड, एक बार ऐसा हुआ कि फायर ब्रिगेड उधर काम करने वाले दो तीन लोगों को थोड़ा आपस में उनको मनमुटाव हो गए हैं। तो एक ने सोचा, अब देखता हूँ अगली बार इसको बताऊंगा। उनमें भी ऐसा ही होता है, फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं उसमें एक गाड़ी चलाता है, दूसरा का काम होता है कि जब वहाँ पहुँच गए तो पाइप को ऊपर तक ले जाना, तीसरे का काम होता है नीचे से वॉल्व खोलना ताकि पानी ऊपर जा सके तेजी से। तो ये सब अलग अलग काम होते हैं सबके। तो अब मान लीजिए, तो एक बार मनमुटाव हो गया, तो एकदम अचानक खबर आई कि कहीं पर आग लगी है, अब जल्दी जल्दी गए, तो दो लोगों के बीच में बड़ा मनमुटाव था। तो उसने देखा, आज इसको बताऊंगा। तो एक व्यक्ति था जो नीचे से नल खोलता था, दूसरा था ऊपर शमन करता था, क्योंकि हमेशा श्रेय मेडल उसको मिलता था जिसको वो शमन करके अपनी जान पर खेल कर आए। तो नीचे जो बैठे रहते थे उनको कुछ नहीं, उनको तो बस बैठे रहे, उनको क्या श्रेय मिलना है? तो एक दिन जब ये लोग गए आग लगाने के लिए, तो पाइप लेकर वो आगे वाला जल्दी से भागा, अब पहुंच गए एकदम आग के सामने और रेडी है, और नीचे वाले ने वॉल्व भी नहीं खोला उसका, अब कर लो जो करना है। अब वो पाइप लेकर खड़ा है, जब तक पानी नहीं आएगा नीचे से वो क्या कर सकता है? तब तो नीचे वाले ने खोला ही नहीं पाइप, तो क्या होगा? वो व्यक्ति भी जल जाएगा आग में, सब कुछ हो जाएगा। ये एक उदाहरण है हमारे लिए समझने के लिए कि भक्ति ये एक साथ मिलकर करने का मार्ग है। अगर कोई ड्राइवर, जैसे वो फायर ब्रिगेड होती है, वो ड्राइवर बोले मैं नहीं चला रहा हूँ गाड़ी, तो आप कौन सी आग बुझा लोगे? चलो ड्राइवर ने चला लिया, आप पहुँच गए, और जैसे नीचे इस व्यक्ति ने वो वॉल्व भी नहीं खोला पानी का, आप क्या कर लोगे? या वो व्यक्ति लेके ही नहीं जाए ऊपर। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हमारी भी भक्ति ऐसी ही है, हमें खुद श्रेय नहीं लेना चाहिए किसी चीज का। क्यों? क्योंकि पीछे से भक्तों ने हमें मदद की है, तब आकर हम कोई बहुत बड़ा काम कर पा रहे हैं, कोई प्रवचन दे पा रहे हैं, कोई कीर्तन कर पा रहे हैं, कोई मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, कोई मंदिर खोल पा रहे हैं, जो भी हम भक्ति में कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर पा रहे हैं इत्यादि, पीछे से कई भक्तों ने मदद की है, भले वो सामने नहीं है। जैसे गोल करने वाला एक व्यक्ति दिखाई देता है, लोग उसका गुणगान करते हैं, लेकिन पीछे से लोगों ने गेंद ला कर दी है उसको, तभी वो गोल कर पा रहा है। फायर ब्रिगेड वाले, आग बुझाने के लिए एक व्यक्ति, उसको श्रेय मिलता है कि उसने आग बुझाई, लेकिन पीछे कितना सहयोग है। अगर मान लीजिए, चलिए जो लोग जा रहे, ड्राइवर ने गाड़ी ठीक से चलाई, वो जो वॉल खोलने वाला है वो भी मदद कर रहा है, पाइप जो आगे पकड़कर बुझाने वाला है वो भी सब सही है, लेकिन जहां पर गाड़ी खड़ी थी उसने पानी ही नहीं भरा अगर टंकी में, तब क्या? सारे वॉल्व खोल दीजिए, सब कर लीजिए, पानी तो है ही नहीं। इसीलिए हरेक की मदद चाहिए, हरेक का सहयोग चाहिए। भक्ति अकेले नहीं की जाती। एकांत की हरेर भक्ति उत्पातेव कल्पते। जब आप ऐसी भक्ति करते हो जहां पर नियम नहीं है, शास्त्र नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, तो केवल उत्पात होता है। क्यों? क्योंकि आप मन से भक्ति करते हो, जैसा आपके मन में आता है वैसी आप भक्ति करते हो, वैसा आप धर्म का निर्माण कर लेते जैसे भी आप चाहें, तो ऐसा नहीं होता है। ये धर्म नहीं है कि जैसे हम चाहें वैसे हम धर्म का निर्माण करें। जैसे सीता देवी को रावण बताते हैं। रावण कई बार सीता के पास जाया करते थे ये कहने के लिए कि तुम मान जाओ मान जाओ। तो एक समय उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है मैंने अधर्म किया है, किसी की पत्नी को उठा लाना ये अधर्म है तुम्हें लगता है? तो ये जान लो राक्षसों के लिए ये अधर्म नहीं है। तो इसलिए तुम ये कह रही हो कि अधर्म है, लेकिन राक्षसों के लिए यह अधर्म नहीं है किसी को भी उठा लाना, ये तो राक्षसों के लिए कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं। तो इसीलिए मैंने जो किया वो अधर्म नहीं है, रावण समझा रहा था कि मैं तो राक्षस हूं तो मैंने जो किया वो अधर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई शेर हिरण को मारकर खा जाता है तो क्या वो अधर्म कर रहा है? नहीं, उसके लिए वो अधर्म नहीं है, उसके लिए तो वो धर्म है, उसके लिए वो बना है। मनु संहिता में लिखा है हर जीव के लिए कार्य है, जीवो जीवस्य जीवनम। तो हर जीव के लिए कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो फिर तो क्या, तो रावण ने कह दिया कि मेरी कोई गलती, ये तो कोई अधर्म नहीं है, इसलिए तुम ये मत सोचो कि अधर्म है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने मन से धर्म की व्याख्या करते हैं। तो धर्म की व्याख्या अपने मन से नहीं हो सकती। इसी तरह एकांत की हरेर भक्ति, एकांत में अपने मन से बन, क्योंकि हम जब अकेले भक्ति करते हैं तो अपने नियम के अनुसार करते हैं, सबके अनुसार नहीं। जैसे हम लोग यहां मंदिर में रहते हैं, मंदिर चलता है, यहां कुछ नियम है कितने बजे आरती होगी, कितने बजे क्या होगा, प्रसाद कितने बजे होगा, ये सब नियम है और उन नियमों से चलेंगे तो एक साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे अपने नियम होते हैं, हम कितने भी बजे उठें, हम कितने बजे भी आरती करें नहीं भी करें, हम सोचने लगेंगे अब मैं बहुत वरिष्ठ हो गया, मुझे आरती की आवश्यकता नहीं है, तो आज से मैं आरती नहीं करूंगा, आज से मैं कीर्तन नहीं करूंगा, बहुत कर लिया। हाँ, तो ये अपने मन से बनाए हुए धर्म केवल पतन का कारण होते हैं। लेकिन भगवान के द्वारा धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा बनाए गए धर्म उसका पालन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए अपने मन से धर्मों को नहीं बनाना चाहिए। तो हनुमान जी ये सिखलाते हैं केवल एक ये शब्द कहकर, वाक्य कहकर कि आप लोग नहीं जाना जब तक मैं नहीं आऊं, कि किस तरह हमें भक्ति में एक साथ मिलकर रहना चाहिए। सहयोग भक्ति में बहुत आवश्यक है। एक साथ मिलकर भक्ति करने से ही शक्ति आती है, एक दूसरे की भक्ति की शक्ति के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। एकता में ही, भक्तों की अगर एकता नहीं होगी, एक दूसरे से सहयोग नहीं होगा, तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी, केवल एक दूसरे को खींचेंगे नीचे की ओर। इसीलिए हनुमान जी के इस उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि जब हनुमान जी जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि किस तरह से हमें एकता बनाए रखनी चाहिए, हमें हमेशा साथ में रहना चाहिए, अकेले भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो फिर हनुमान जी कूदे, और हनुमान जी जब कूदे हैं तो हम कई बार ये वर्णन कर चुके हैं इसलिए विस्तार से नहीं करेंगे कि हनुमान जी की बाधाएं आई, चार बाधाएं। और पहले मैनक पर्वत आया, तो मैनक पर्वत सुविधाओं का सूचक है। जब आप भक्ति करने लगोगे तो आपके लिए सुविधाएं आएंगी, आप वैरागी बनोगे सुविधाएं आएंगी। अभी उदाहरण देते हैं, सन्यासी हैं हमारे आंदोलन में, सन्यासी का अर्थ क्या है? पूर्ण वैराग्य। लेकिन देखिए हमारे सन्यासियों के लिए भगवान ने कितनी सारी सुविधाएं भेजी हैं। जिन लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को जो गाड़ियां नसीब नहीं होती हैं, वो सन्यासी जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक दृष्टि से भिक्षुक हैं, भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है, उनके लिए वो तैयार खड़ी रहती हैं गाड़ियां। एक समय एक सन्यासी के लिए किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी बहुत महंगी गाड़ी लेकर आए कि आप इसमें चलेंगे, तो सन्यासी यही कह रहे थे कि देखो हम लोग वैरागी सन्यासी, लेकिन भगवान कितनी सुविधा। प्रभुपाद कहते थे एक बार जब बहुत बड़ी गाड़ी प्रभुपाद को दी गई, तो प्रभुपाद ने कहा कि आप लोगों को तो मुझे सोने की कार देनी चाहिए, ये पतरा वतरा बेचे तो कुछ मिलता भी नहीं है। सोने की कार देनी चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि अहंकार था प्रभुपाद को कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं। उन्होंने कहा मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूं, कृष्ण का दास हूं, तो इसलिए मुझे ये गाड़ी मिलनी चाहिए। तो कृष्ण व्यवस्था करते हैं, लेकिन भक्त के लिए आवश्यक है कि वो उसमें सुविधाओं में खो नहीं जाए। तो हनुमान जी ये उदाहरण देते, मैनक पर्वत सोने का पर्वत सामने आया। मैनक पर्वत ने बड़ी नम्रता से कहा, हनुमान जी आप बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो, थोड़ा सा आराम कर लो यहाँ पर मेरे ऊपर, क्योंकि आप इतनी दूर जाना है, फिर बहुत विशाल काम है, मैं भी चाहता हूँ आपकी कोई सेवा करूँ। तो मैनक पर्वत बड़ी नम्रता से सेवा के भाव से सुविधा दे रहा था, कोई हनुमान जी को पथभ्रष्ट करने के लिए नहीं, सेवा के भाव से, क्योंकि उसके लग रहा था ये हनुमान जी भगवान राम की इतनी बड़ी सेवा करने वाले हैं, थोड़ी बहुत मैं भी इनकी सेवा कर दूं। तो इसी तरह जब हम लोग भक्ति करते हैं तो हमें बहुत सारी सुविधाएं आ जाती हैं, रिस्पेक्ट आदर आ जाता है। जैसे मैनक पर्वत आकर हनुमान जी को बोल रहा है, वैसे कभी नहीं बोलता, लेकिन सेवा कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी की, तो आकर तो हनुमान जी ने क्या किया, हाथ से स्पर्श किया, प्रणाम कर दिया, क्षमा चाहता हूं मैं अभी सेवा में हूं, मैं आराम नहीं कर सकता। तो इसी तरह हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि जब सुविधाएं मिलें, जैसे मैनक पर्वत, और वो भी बड़े अच्छे भाव में वो दे रहा था, तो कई लोग आकर कहेंगे प्रभु जी आप लोग इतना प्रचार करते हैं, आप इतनी सेवा कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, कृपया ये सुविधा को स्वीकार कीजिए। तो भक्त को बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम लोग सुविधाओं में फंसे नहीं। तो पहली चीज, पहली बाधा पार की। फिर दो राक्षसियां आई, जैसे हम सब जानते हैं कि उन्होंने फिर एक ने छाया को पकड़ लिया, एक ने मुंह बड़ा कर लिया। तो पहली ने मुंह बड़ा कर लिया, हनुमान जी ने वहां भी सिखलाया, हनुमान जी भी बड़े, फिर बड़ा मुंह, फिर बड़े, फिर बड़ा, और फिर हनुमान जी एकदम छोटे से हो गए, मुंह के अंदर गए, बाहर आ गए, चलो आपके जो आपको वरदान मिला था ब्रह्मा जी का पूरा हो गया। तो भक्ति में भी हमें ऐसे कि बड़े बड़े होना मतलब अहंकार एक दूसरे का, कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। जितना हम अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं उतना कष्टों में जाते हैं। लेकिन जहां हम नम्र हो जाते हैं, हनुमान जी इतने से हो गए और इतना बड़ा उसने मुंह खोला हुआ था, हनुमान जी अंदर से जाकर बाहर आ गए। तो ये दिखलाने के लिए कि हमारे हृदय में जब हम नम्रता लाते हैं तो भक्तों में वाद विवाद नहीं होता, भक्तों में वाद विवाद अहंकार के कारण होता है। जब हम अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं ये हमारे वाद विवाद का कारण है। अगर हम बहुत नम्र हो जाएं कि ठीक है आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो फिर भक्त दूसरा भक्त भी नम्र हो जाता। तो वाद विवाद को अगर दूर रखना है तो अहंकार से परे रहना चाहिए। तो हनुमान जी ये सिखलाते। फिर जब हनुमान जी आगे गए तो एक असुरनी ने उनकी छाया को पकड़ लिया, हनुमान जी ऊपर हवा में अटक गए, आगे ही नहीं जा पा रहे। तो क्या हुआ, छाया को पकड़ लिया था। ये भी बहुत सुंदर उपदेश हमें मिलता है कि भक्ति में हमें छाया को पकड़ने का प्रयास नहीं करना। छाया अर्थात व्यक्ति के दुर्गुण, उसको छाया, काला, छाया काली होती है ना, तो छाया पकड़ना मतलब काला जो हिस्सा है व्यक्ति का, अर्थात जो उसके दुर्गुण हैं उनको देखना, उनको पकड़ने का प्रयास करना, ये छाया पकड़ने के समान है। और छाया इसमें कोई सब्सटेंस, उसमें कोई चीज नहीं होती, आप छाया को पकड़ सकते हो? छाया को कैसे पकड़ोगे? छाया तो क्या है, केवल एक प्रतिबिंब है, व्यक्ति कहीं और है। इसी तरह व्यक्ति के जो दुर्गुण हैं वो एक प्रतिबिंब मात्र हैं उसकी शुद्ध चेतना के आवृत होने के कारण, तो इसलिए उनको नहीं पकड़ना चाहिए, व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए। तो ये हनुमान जी सिखलाते हैं। और फिर जब हनुमान जी लंका पहुंचे, वहां लंकिनी थी, घूम रही थी इधर उधर, हनुमान जी जाने लगे, उसने रोक दिया, आई अंदर नहीं जाना, हनुमान जी ने एक थप्पड़ मारा उसको, धड़ा, और वो जाकर बहुत दूर गिरी। और फिर आकर उसने प्रणाम किया हनुमान जी को, कहा आपका स्वागत है लंका में, मैंने सुना था ब्रह्मा जी से कि जिस दिन तुम्हें एक बंदर आकर थप्पड़ मारेगा, समझ लेना रावण का अंत आ गया। आइए, स्वागत है। तो लंकिनी को भी थप्पड़ मारने के उद्देश्य से भगवान हनुमान जी समझा रहे थे कि जब हम लोग प्रचार करें, भगवान की सेवा करें, तो उसमें जो विरोधी हों, ऐसे विरोधी जो हमें चाहते ही नहीं कि हम सेवा करें, तो उनको थप्पड़ मारना चाहिए, मतलब परास्त करना चाहिए, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। नहीं तो आप लोग जहाँ किसी ने कुछ कहा सबको थप्पड़ मारेंगे, बोले हनुमान जी ने मारा था। परास्त करना चाहिए, उनको हराना चाहिए हमें, और उनको अपने मार्ग पर लाना चाहिए अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से, इस तरह से। तो खैर, हनुमान जी अब लंका में पहुंच गए इतनी सारी बाधाओं को। देखिए, अभी केवल एक कूदे हैं हनुमान जी, कितने सारे उपदेश हमें दे चुके हैं, है ना। अभी तो लंका पहुंचेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो अब लंका पहुंच गए, तो अब आज का प्रवचन प्रारंभ करेंगे यहां से, ठीक है। अभी तक तो हम केवल भूमिका बांध रहे थे कि हनुमान जी कैसे पहुंचे। तो हनुमान जी पहुंच गए, और वहां पर पहुंचकर हनुमान जी ने ढूंढने लगे, हनुमान जी कहाँ है सीता, कहाँ है सीता, कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते एक महल में पहुंचे जहाँ मंदोदरी सो रही थी, और मंदोदरी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो हनुमान जी ने देखा कि ये स्त्री इतने आराम से सो रही, इतनी सुंदर है, अच्छे बड़े बेड पर सोई हुई थी। तो हनुमान जी सोचने लगे यही सीता होंगी। हनुमान जी ने तो देखा नहीं था सीता को, तब तो उन्हें देखिए हनुमान जी का कार्य कितना कठिन था। ऐसा नहीं था रामचंद्र जी ने सब फोटो वीडियो सब देखकर भेजा था कि ये सीता है, देख लेना पहचान में आने के लिए। तो एक तो उनको ढूंढने जा रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन है, मतलब देखा नहीं है कभी। और ऐसा भी नहीं था कि न्यूज़पेपर में आता रहता था, जैसे आजकल के कोई प्रधानमंत्री है वो उनकी फोटो आती रहती है, तो नहीं भी देखा तो मालूम है कौन है प्रधानमंत्री या अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, कुछ नहीं था। तो कितना कठिन कार्य था उस व्यक्ति को ढूंढना है जिसको देखा ही नहीं कभी, जिससे बात नहीं की, ना वो आपको जानता है ना आप उनको जानते हो। चलो वो भी जानते हो तो वो पहचान लें, वो भी नहीं जानते। तो हनुमान जी अलग अलग स्त्रियों को ढूंढ रहे हैं, तो मंदोदरी को देखा, तो जैसे उन्होंने देखा उनको लगा सीता मिल गई, और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए, कूदने लगे, पूंछ पटक पटक कर आनंद लेने। आपने देखा कभी बंदर जब खुश होता है तो उसकी पूंछ को पटकता है, और चूमने लगे अपनी पूंछ को पकड़ पकड़ कर। ऐसे बंदर थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे ना कि वो बंदर हैं, तो थोड़ा बहुत तो करना है बंदर की तरह आचरण, जैसे रामचंद्र जी मानव की तरह आचरण कर रहे हैं ना कि कहाँ है सीता, कहाँ है सीता। तो हनुमान जी को भी दिखाना था, अपनी पूंछ पटक पटक कर पड़े जमीन पर पटक रहे, ले लेके चूम रहे अपनी पूंछ को ही चूम रहे कि हो गया, मिल गया, मिल गई सीता, बड़े प्रसन्न। लेकिन फिर उनके मन में आया कि ये सीता नहीं हो सकती। क्यों? पहला कारण, कितने आराम से सो रही है। अरे सीता श्री राम जी के बिना इतने आराम से सो नहीं सकती, ये सीता कैसे हो सकती है। और फिर इतने आलीशान बेड पर सोई हुई है, फिर उन्होंने देखा धीरे से कुछ थोड़ी बदबू भी आ रही है खाने पीने की, बोले ये सीता नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए ये सीता नहीं है। तो फिर उस समय वो फिर वहां से आगे चले। तो एक बहुत सुंदर उपदेश हमें यहाँ मिलता है कि कभी कभी जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, जैसे हनुमान जी प्रसन्न हो गए, तो हम सत्यता को देख नहीं पाते हैं, सत्य को नहीं देख पाते हैं प्रसन्नता में ज्यादा। हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए कि ये बात उन्होंने पहले नहीं सोची कि कैसे सीता देवी इतने आराम से सोएंगी। वैसे एक स्थान पर एक व्यक्ति वर्णन कर रहे थे कि क्यों उनको वो सीता लगी मंदोदरी, क्योंकि रामायण के एक संस्करण में ऐसा लिखा हुआ है कि सीता देवी मंदोदरी की पुत्री थी, एक बाहर थाईलैंड की एक संस्करण है रामकीन, उसमें ऐसा लिखा है कि वो मंदोदरी, जो मंदोदरी ने जन्म दिया था, फिर रावण को बताया गया कि ये लड़की तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, रावण ने फेंक दिया उसको समुद्र में, फिर बाद में आगे चलकर वो जनक महाराज को मिली। ऐसा उसमें वर्णन है, रामायण का प्रमाणिक वर्णन नहीं है, वाल्मीकि रामायण का, इसलिए हम लोग उसको स्वीकारते नहीं हैं। लेकिन फिर भी ऐसा है, तो एक भक्त कहते शायद इसीलिए हनुमान जी को लगा होगा कि माता और माँ और पुत्री की चेहरा मिलता है इसीलिए। तो जब हम लोग बहुत आनंद में होते हैं हम सत्यता को भूल जाते हैं। जब हमारे जीवन में बहुत आनंद होता है, सब कुछ ठीक चलता है, तो हम आगे आने वाले कष्ट को देख नहीं पाते हैं। हम सत्यता से परे चले जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम भौतिक जगत में हैं। इस जगत का आनंद और इस जगत का कष्ट एक समान है, हमारे लिए नहीं है। भक्तों को इसके परे जाने की सोचना है। तो इसलिए कभी कभी जब हम बहुत आनंद में होते हैं तो हम सत्यता को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि आनंद थोड़े समय का है, ये जगत ही शाश्वत नहीं है, तो इस जगत का आनंद कैसे शाश्वत हो सकता। और इसीलिए आने वाले कष्ट को देख नहीं पाते। आ रहा है बस थोड़ा समय के लिए। जैसे आप समुद्र में होते हो तो समुद्र में लहरें आती हैं, एक लहर बड़ी तेजी से आती है, आपको उछाल देती है, फिर एकदम शांत हो जाता है, तब आपको लगता है अरे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख नहीं पाते, पीछे से दूसरी लहर आ रही है बहुत बड़ी, वो और उठाकर पटकने वाली है आपको। ऐसा अनुभव है ना आप सबको, कभी जगन्नाथपुरी वगैरह कहीं पर, या जगन्नाथपुरी जाने की जरूरत नहीं है, आपके तो इधर ही है पास पीछे, तो यहाँ पर लेकिन इतनी ऊंची लहरें नहीं है। तो कभी ऐसा अनुभव होगा, आप लोग समुद्र में स्नान करते हो, अचानक खड़े हो, इतनी तेज लहर आती है, पटक देती है नीचे, पानी में गिर जाते, सब नमक का पानी मुंह में चला जाता, फिर आप उठते हो, फिर तब तक दूसरी आ जाती है, और जब तक नहीं आती पानी शांत होता, बड़ा अच्छा लगता। ये जगत का सुख दुख ऐसा ही है। दुख उस लहर के समान है जो आकर पटक देती, गिर जाते हैं, मुंह के बल गिरते हैं, पानी में अंदर चले जाते, बहुत कष्ट होता है, पानी मुंह में चला जाता है, नाक में भर जाता है। तो ये लहर कष्ट के समान है इस जगत के। और सुख क्या है? जब वो लहर नहीं आ रही, बस वो लहर आके एकदम शांत हो जाती है, तो हमें लगता है सब कुछ ठीक है। ठीक नहीं है, पीछे से दूसरी बहुत बड़ी लहर आने वाली है, उसको हम देख नहीं रहे। तो इसीलिए सुखों में हम सत्यता को ना भूलें। सत्यता क्या है? ये जगत दुखालयम अशाश्वतम है। इस जगत में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, इसमें सुख पाने का प्रयास नहीं करें तो सुख में और दुख में समान बने रहें, ये हमें जानना चाहिए। तो ये हनुमान जी के द्वारा हम लोग सीखते हैं। तो उसके बाद जब उनको पता चल गया कि ये सीता नहीं हो सकती, तो कैसे पता चला उन्हें? उन्हें पता चला क्योंकि जो उनका वेश था, जो थोड़ी बहुत बदबू आहार था, तो व्यक्ति को उसके लक्षणों से, उसके आचरण से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। हमारा आहार, हमारा वेश, हमारा स्थान कैसा है। जैसे श्री रामचंद्र जी जब वन में जा रहे थे, गुहा निषाद ने उन्हें कहा कि आप आइए मेरे नगर में रहिए, मेरा राज्य आपका राज्य है, चिंता मत कीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वनवासी का वेश, वनवासी का आहार और वनवासी का स्थान ग्रहण किया। तो ये चीजें हमारे चरित्र को प्रकट करती हैं। हम कैसा, कैसे कपड़े पहनते, जैसे आप देखिए बाहर के जगत में लोग बहुत भड़कीले कपड़े पहनते हैं, कभी कभी हमने देखा ऐसे कि एकदम वो देखकर लगता है ये क्या पहन लिया, क्या उठा कर लाया, तंबू बांध लिया या क्या किया, कलरफुल एकदम। तो वो है, उनके हृदय बहुत ज्यादा काम वासनाओं से भरे हैं, इसलिए लोगों को आकर्षण करने के लिए वो ऐसे तड़क भड़क के कपड़े पहन लेते हैं, वेश। दूसरी ओर कुछ लोग हैं जिनकी काम वासना बहुत ज्यादा है, वो पहनते नहीं है, वो अलग बात है। तो ये वेश जो हमारा है वो दिखलाता है हमारा भाव, हमारे चरित्र, हमारा आचरण। आहार, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो लोग तमोगुणी हैं वो अलग आहार करते हैं, रजोगुणी अलग आहार करते हैं, सत्वगुणी अलग आहार करते हैं, और भगवान के भक्त वो तो फीस्ट खाते हैं, उनका तो वर्णन नहीं होना चाहिए, वो दिव्य चीजों को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि जब हम लोग, हमारा जो आहार है, हमारा जो आचरण है, वो कैसा, उससे व्यक्ति को जाना जाता है। जैसे महाभारत में वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज जिस समय द्रौपदी को लेकर आए और द्रौपदी को पांचों से विवाह होगा, ये युधिष्ठिर महाराज के मुख से निकल गया कि इनको पांचों को विवाह होना है, और कुंती के मुख से पहले निकला कि ये पांचों को विवाह करना चाहिए इसको, तो सब कहने लगे ये तो अधर्म है, ये कैसे हो सकता, एक स्त्री के पांच पांच पति, ये क्या कह दिया आपने। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा अगर मेरे मुख से निकला है तो ये धर्म है। देखिए कैसे हमें इतना, युधिष्ठिर को इतना विश्वास था कि वो कभी अधर्म की बात कह ही नहीं सकता। कितने कितना चरित्र महान होगा उस व्यक्ति का जिसको पूरा विश्वास है कि उसके मुख से निकली हुई कोई बात अधर्म नहीं हो सकती। लक्षणों से व्यक्ति को पहचान लिया जाता था। शकुंतला की कथा है, जब महाराज दुष्यंत शिकार करते करते जंगल में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक चले गए एक ऋषि के आश्रम में, अकेले थे भूखे प्यासे, तो ऋषि के आश्रम से कन्या बाहर आई और उसको देखते ही महाराज दुष्यंत के मन में उससे विवाह करने की इच्छा हो गई। उन्होंने पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं शकुंतला हूँ और मैं ऋषि की पुत्री हूँ। महाराज दुष्यंत ने क्या कहा, उनको कुछ नहीं पता था, वो तो जानते भी नहीं थे कि आश्रम में एक लड़की या ऐसे एक युवती दिखाई देगी। लेकिन महाराज दुष्यंत ने क्या कहा कि अगर मेरे हृदय में आपसे विवाह करने की इच्छा आ रही है तो आप ब्राह्मणी नहीं हो सकते, आप क्षत्रिय हैं। देखिए चरित्र को जानने का प्रयास कीजिए, कोई ऐसा कह सकता है। महाराज दुष्यंत ने कहा, मतलब वो क्या कह रहे थे कि मेरा चरित्र इतना साफ है कि कभी मैं किसी ब्राह्मण पुत्री के लिए गलत विचार मन में ला ही नहीं सकता, तो अगर मेरे मन में आपसे विवाह करने का विचार आया है तो आप ब्राह्मणी नहीं होंगी, मतलब आप झूठ बोल सकती हैं लेकिन मेरे हृदय में कभी ऐसे गलत भाव नहीं आ सकते। ये चरित्र है, ऐसे चरित्रों से व्यक्ति को जाना जाता, ऐसे आचरण से व्यक्ति को जाना जाता, युधिष्ठिर महाराज इत्यादि। तो इसीलिए हमारा आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं ये मंदोदरी नहीं हो सकती, तो फिर वो आगे चले और फिर हर स्त्री को देख रहे हैं। रामायण में वर्णन है कि वो स्त्रियां शराब पिए हुए, उनके मुंह से बदबू आ रही है, कपड़े ऐसे ही पहने हैं, ठीक से नहीं पहने हैं, ऐसे ही लेटी हुई हैं, सो रही हैं, और हनुमान जी हर एक को जाकर देख रहे हैं। ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, और रात्रि के समय सोई हुई स्त्रियां उनको जाके उनकी शक्ल देख रहे हैं। हाँ ये नहीं लगती, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं लगती। और अचानक हनुमान जी के मन में विचार आया, मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं एक ब्रह्मचारी हूं, रात के समय जो ऐसे अस्त व्यस्त अवस्था में सोई हुई स्त्रियां उनको मैं जाके देख रहा हूं उनके कमरे में, ये तो ठीक नहीं है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचारी को तो वैसे भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन ऐसे रात्रि के समय जाके उनके कमरे में, तो क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। उनके मन में विचार आ गया कि शायद मेरा जो धर्म है वो मेरा धर्म समाप्त तो हो रहा है, या मैं धर्म तोड़ रहा हूं अपना ब्रह्मचर्य का। लेकिन फिर उनके मन में आया कि नहीं, इनको देखने से मेरा मन विचलित नहीं हो रहा है, मेरे मन में कोई विकार नहीं आ रहे हैं, और फिर मैं तो भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं, इसीलिए कोई गलती नहीं। तो हनुमान जी बहुत सुंदर बात सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं हनुमान जी? सिखलाते हैं कि हमारी रक्षा केवल सही सेवा भाव और पूर्ण रूप से कृष्ण में लगे रहने से हो सकती है। जिस दिन हमारा सेवा भाव गलत हो गया, जिस दिन हमारा मन कृष्ण में नहीं लगा, हम अधर्म में माया में पड़ जाएंगे। तो हालांकि ब्रह्मचारी होते हुए उनके लिए धर्म है कि ऐसे रात्रि के समय किसी स्त्री को देखना नहीं चाहिए, वो भी अस्त व्यस्त अवस्था में उसके कमरे में जाकर, लेकिन हनुमान जी कर रहे हैं और उनका मन विचलित नहीं हो रहा, क्योंकि उनका मन कृष्ण में लगा है, श्री रामचंद्र में लगा है, और क्योंकि उनका सेवा भाव सही है, वो सेवा की दृष्टि से रामचंद्र जी की प्रसन्नता की दृष्टि से कर रहे हैं, इसीलिए कोई उनके मन में विकार नहीं। तो हमारे लिए संदेश है कि हम अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, सही भाव में करें, कृष्ण का स्मरण करते हुए करें, कभी अधर्म नहीं करेंगे। जो बाहरी दृष्टि से लग सकता है अधर्म, वो भी अधर्म नहीं होगा। और इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः, कि जिसका मन मुझ में लगा हुआ है उसको साधु ही समझना चाहिए। क्योंकि बाहरी दृष्टि से अगर हम हनुमान जी को देखें तो हम कह सकते हैं ये तो कौन, ये ठीक नहीं कर रहे हैं हनुमान जी, क्यों ब्रह्मचारी होकर रात को ऐसे स्त्रियों के कमरे में जा रहे हैं, कैसे हैं, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन कहीं नहीं कहा गया, वाल्मीकि मुनि नहीं कहते, क्यों साधुरेव समन्तव्य, क्योंकि उनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा है, तो उनके मन में विकार नहीं है। तो इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि जब हम सेवा करें तो हमें हमारी रक्षा के लिए सही भाव और कृष्ण में पूर्ण रूप से मन को लगाना बहुत आवश्यक है। ये दो चीजें करेंगे तो कभी अधर्म के पथ पर नहीं चलेंगे। सेवा भाव अच्छा होना चाहिए। सही सेवा भाव क्या है? हम सेवा किस लिए करते हैं? हम चाहे भगवान के लिए भोग बनाएं, हम चाहे भगवान के लिए हार बनाएं, भगवान का मंदिर साफ करें, प्रचार करें, कुछ भी करें, हम सेवा किस लिए करते हैं? भगवान की, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर ये भाव हृदय में नहीं है तो फिर सोच लीजिए कि आपकी सेवा सही नहीं है। अगर भाव ये है कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊं, मैं बड़े अच्छी तरह से शास्त्र पढ़ूं और इतना अच्छा बोलूं सारी दुनिया में मेरा नाम हो जाए, ये भक्ति नहीं है, ये सेवा का सही भाव नहीं है। सेवा का सही भाव है कि मैं अच्छी तरह से शास्त्र पढ़ूं, अच्छी तरह से उसको प्रस्तुत करूं ताकि कृष्ण प्रसन्न हो जाए, ताकि सुनने वाले का हृदय परिवर्तन हो और वो कृष्ण की ओर आए। बस, तो कृष्ण की प्रसन्नता ये हमारी सेवा का मूल उद्देश्य होना चाहिए और कुछ नहीं। सेवा अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता। अगर कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है तो वो सेवा नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति है, वो भोग है, भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर। इसीलिए सेवा मतलब कृष्ण की प्रसन्नता। सेवा और कृष्ण की प्रसन्नता को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस जगत में भी हम लोग सेवा करते हैं, कोई परिवार की करता है, कोई समाज की करता है, कोई राष्ट्र की करता है, तो इस जगत में भी सेवा करते हैं, लेकिन वो सेवा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कृष्ण की प्रसन्नता नहीं, उसको अलग कर दिया गया है कृष्ण की प्रसन्नता से। और जहां कृष्ण की प्रसन्नता से अलग किया गया वो सेवा नहीं, काम है। इस जगत में काम योगी हैं सब, कर्म योगी नहीं है। कर्म योगी अर्थात कर्म के द्वारा कृष्ण से जुड़ना, उसे कर्म योगी कहते हैं। कई लोग अपने आप को कर्म योगी कहते हैं, वो कहते हैं हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम अपने काम को ही पूजा मानते हैं, इसलिए हम कर्म योगी हैं। वो काम योगी हैं, कर्म योगी नहीं है। काम से आसक्त हैं, वासनाओं से, इच्छाओं से आसक्त हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है। इसीलिए हमें सच्चा कर्मयोगी बनना है। सच्चा कर्मयोगी वो है जो कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ता है। सच्चा कर्मयोगी वो है जो अपनी सेवा के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। सच्चा कर्मयोगी वो है जो कर्म के द्वारा अहंकार को नहीं पालन करता या अहंकार की पूजा नहीं करता, वो सच्चा कर्मयोगी है। तो ऐसे कर्मयोगी हमें बनना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, और यही चीज हमारी रक्षा करेगी। तो जान लीजिए, अगर भक्ति में रक्षा चाहिए तो ये भाव होना चाहिए, हनुमान जी हमें सिखलाते हैं। और फिर जब हनुमान जी बहुत देर तक ढूंढ चुके तो उसके बाद हनुमान जी सोचने लगे शायद सीता देवी मर गई, क्योंकि इतने समय से ढूंढ रहा हूं, इतनी स्त्रियों को देख लिया, अब लगता नहीं है कि वो यहां पर है, वो शायद मर चुकी हैं। तो ऐसे सोचकर उनका उत्साह कम हो गया कि शायद सीता देवी, तो वो बहुत कुछ सोचने लगे। तो भक्ति में उत्साह ये बहुत आवश्यक है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है अनिर्वेदम श्रियः मूलम अनिर्वेदम परम सुखम। व्यक्ति को कभी भी उत्साह को त्यागना नहीं चाहिए। मूल जड़ है उत्साह। अगर भक्ति में उत्साह चला गया तो आपके पास सब कुछ होगा। भक्त होंगे, कृष्ण होंगे, मंदिर होगा, ग्रंथ होंगे, मार्ग होगा, लेकिन आप पालन नहीं कर पाओगे। क्यों? उत्साह चला गया। तो हनुमान जी का उत्साह कम हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा शायद मर गई सीता देवी, हो सकता है जीवित नहीं रही हो, खुद ही आत्महत्या कर ली हो उन्होंने, या रावण ने मार दिया हो, बहुत कुछ विचार आया हनुमान जी के मन में, तो उत्साह कम हो गया। इसीलिए उत्साह को हमें बनाए रखना चाहिए। और उत्साह को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? रोज श्रवण करना बहुत आवश्यक है, उत्साह बना रहता है। ये श्रवण हमारे लिए गाड़ी में डालने वाले ईंधन की तरह है। अगर हम गाड़ी में रोज ईंधन नहीं डालेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। भक्ति में अगर श्रवण करेंगे नहीं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, उत्साह नहीं आएगा। तो इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो कष्ट आए भक्ति में उसको एक आगे बढ़ने का साधन बनाना, ये हमें भक्ति में प्रगति करा सकता है। तो भक्ति की प्रगति के लिए या उत्साह को बनाए रखने के लिए सबसे पहला रोज श्रवण करना चाहिए, बिना चूके श्रवण होना चाहिए। भागवत का श्रवण, भगवद गीता का श्रवण। और दूसरी चीज, जब कोई बाधाएं आ जाएं हमारी भक्ति में, हमारे जीवन में, और होगा ही, ऐसा मत सोचिए कि आप श्रवण रोज कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आपके जीवन से कोई बाधा नहीं आएगी, अब सब चली गई। बहुत बाधाएं आएंगी, तैयार रहिए। जब बाधाएं आए तो उनको एक आगे बढ़ने का मार्ग बनाना। ध्रुव महाराज जब जा रहे थे तो साक्षात मृत्यु आए कि आप मेरी, ये शरीर मेरी संपत्ति है, इसको दे के जाइए, वो झुके, तो ये बाधा थी। ध्रुव महाराज जा रहे हैं और एक बाधा आई। ध्रुव महाराज ने क्या किया, उनके सर पर पांव रखकर प्लेन पर चढ़ गए, उसको सीढ़ी बना लिया ऊपर चढ़ने के लिए। वो झुक गया बेचारा कि भाई आप महान भक्त हैं लेकिन ये शरीर दे जाइए प्रणाम। तो जैसे ही झुका, उसके सर पर पांव रखा, ऊपर चले गए। फिर उसको बोला टाटा मैं तो जा रहा हूं वैकुंठ। तो ऐसे ही जो बाधाएं आए उनके सिर के ऊपर पांव रखकर हमें ऊपर चढ़ना चाहिए, उनको सीढ़ी बनाना चाहिए, उनमें घबराना नहीं चाहिए, उनमें डूबना नहीं चाहिए, तब उत्साह बना रहेगा। और तीसरी चीज हमें करनी चाहिए, प्रार्थना, भगवान से तीव्र प्रार्थना करें। जब भी हमारा उत्साह कम हो, हमें भक्ति में थोड़ा बहुत कमी लगने लगे, जगन्नाथ जी के सामने आइए, गौर निताई के सामने आइए और तीव्रता से प्रार्थना कीजिए, और देखिए कैसे भगवान हृदय में आपको उत्तर देते हैं, निश्चित देंगे। आप जब भगवान से बात करते हो तो उत्तर निश्चित आएगा। श्रद्धा से आइए। हमारे पास श्रद्धा नहीं है, हम भगवान के दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस श्रद्धा से नहीं करते, इसीलिए कुछ सुनाई नहीं देता, लगता है लकड़ी है, पदार्थ धातु है। लेकिन अगर वही श्रद्धा से आए आप भगवान के सामने, पूर्ण श्रद्धा, और खड़े रहिए जब तक भगवान उत्तर नहीं दे, हमें विश्वास है आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन हम लोग जरा सा खड़े होते हैं, बात करते कुछ सुनाई नहीं देता, हम चले जाते हैं कि भगवान को 5 मिनट के अंदर उत्तर देना चाहिए, अगर नहीं देंगे तो फिर मैं जा रहा हूं। अब आइए, श्रद्धा तो प्रार्थना करनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में। तो इसीलिए पहली चीज श्रवण करें, दूसरी चीज बाधाओं को एक सीढ़ी बनाएं ऊपर जाने के लिए, और तीसरी चीज तीव्रता से प्रार्थना करें भगवान से, अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए, अपने अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए, उनकी शरण जाने के लिए, उनकी सेवा के लिए तीव्रता से प्रार्थना। बहुत शक्तिशाली हैं प्रार्थनाएं, अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। हमें अपना हृदय भगवान के सामने खोलना चाहिए। वैसे तो वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं तब वो उस पर कार्य करते हैं। और चौथी चीज, भक्तों का संग। उत्साही भक्तों के संग में रहना चाहिए उत्साह को बढ़ाने के लिए। जैसा संग वैसा रंग, हम जैसे संग में होते हैं वैसा ही। अगर हम अनुत्साही भक्तों के संग में हैं जिनको कोई उत्साह नहीं है, आप जाते हो प्रभु जी रामनवमी आ रही है चलिए कुछ करेंगे, देखेंगे बाद में आना, आपको भी लगता है अच्छा ठीक है जाने दो, सारा उत्साह नीचे। फिर आप किसी और भक्त के पास जाते प्रभु जी रामनवमी आइए मंदिर को सजाना है, अरे क्या लगा दो, दो चार फूल तोड़ो उधर से लगा दो क्या है, तो सारा उत्साह। अब ऐसे आप उत्साही भक्तों के पास जाते हैं प्रभु जी आपके अंदर उत्साह नहीं है, लेकिन आप जाते प्रभु जी रामनवमी आ रही कुछ करना है क्या, तो आपने ऐसे पूछा और वो भक्त उत्साही है बोले हाँ चलो चलो जाएंगे जल्दी से पत्ते तोड़कर लाएंगे फूल लाएंगे बहुत सारे अभी बनाएंगे मंदिर को सजाएंगे, कितना अच्छा उत्सव है भगवान प्रकट हो रहे हैं, जब उस समय हुए थे तो सारी अयोध्या सज गई थी। आपका उत्साह इतना बढ़ जाएगा, अरे पूरी अयोध्या सजी थी कम से कम मंदिर तो सजा दूं मैं। तो इसलिए भक्तों के, ऐसे भक्तों के संग में रहना। तो उत्साह को बढ़ाने के लिए ये चार चीजें कीजिए आप लोग। क्या क्या है चार चीजें? श्रवण करना, भूल गए ओके, प्रार्थना, भक्तों का संग, बाधाओं को, वेरी गुड, बाधाओं को हमें सीढ़ी मानकर ऊपर जाना चाहिए, उनमें फंसे नहीं रहना चाहिए, तब उत्साह बना रहेगा। तो ऐसे हनुमान जी उत्साह को बनाए रखते हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि हो सकता है सीता देवी कैसे मरी हो उसकी चिंता करने लगे कि कैसे मर गई, हो सकता है समुद्र में गिर गई हो, जब रावण लेकर आ रहा था आकाश मार्ग से, हो सकता है उन्होंने कूद गई हो, या फिर रावण ने काट दिया हो। रावण को किसी को काटने में कितनी देर लगती है, उसका तो रोज का काम था, उसने कहा था आकर जब सीता देवी थी कि ये सीता को इतने इतने एक महीने का मैं समय देता हूँ, अगर नहीं तो उसके बाद ब्रेकफास्ट में काट के तुम मेरे लिए प्रस्तुत कर दी जाओगे। तो हनुमान जी सोच रहे कि शायद काट दिया होगा, या फिर हो सकता है कि कुछ और हुआ हो इत्यादि, ऐसे सोचने को। फिर वो सोचने लगे कि अगर मैं ये समाचार जाकर रामचंद्र जी को दूंगा कि सीता देवी नहीं रही, तो रामचंद्र जी तो तुरंत अपना प्राण त्याग देंगे, और रामचंद्र जी त्यागेंगे लक्ष्मण त्याग देंगे, राम लक्ष्मण त्यागेंगे, भरत त्याग देंगे, शत्रुघ्न त्याग देंगे, सारी माताएं त्याग देंगी, सारे अयोध्या के लोग त्याग देंगे। तो हनुमान जी सोचने लगे मेरे एक की वजह से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मैं सीता को नहीं ढूंढ पाया, इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं क्या कर सकता हूं मेरे लिए थोड़ी होगा, सीता मरी मेरा उसमें क्या लेना देना है, मैं तो अपनी सेवा कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने कहा मेरी वजह से, ये एक भक्त का भाव है कि उसको दूसरों को श्रेय देना चाहिए लेकिन निंदा अपने ऊपर लेनी चाहिए, जैसे भरत ने किया। भरत जब आए तो मंथरा को सब शत्रुघ्न मारने का प्रयास कर रहा था, भरत ने रोक दिया, सब हुआ। अंत में भरत कहते हैं न मंथरस्य न च मातरस्य दोषो न राजन न च राघवस्य, कि क्यों इसको तंग करना है, न मंथरस्य, मंथरा की कोई गलती नहीं है, अरे वो तो दासी है, तो उसका तो स्वभाव है ऐसे सब करना, उसने अपने मालकिन के लिए कुछ करने की इच्छा की तो उसकी क्या गलती है, न मंथरस्य। तो लोगों ने कहा ठीक है मंथरा की नहीं तो माता की गलती है, कैकई ने माना क्यों, अरे कैकई को तो बुद्धि थी, मंथरा को नहीं थी। तो कहते न मातरस्य, माता की भी नहीं है, क्यों कैकई की क्यों नहीं है, वो माँ है, स्वाभाविक है एक माँ अपने बच्चे के लिए अपने लड़के के लिए सबसे अच्छा कुछ चाहेगी, तो उसमें क्या गलती है, उसकी गलती नहीं है, वो तो माँ है, माँ माँ का हृदय कोमल होता है, अपने बच्चे के लिए कुछ चाह रही थी उसने मांग लिया। तो न मंथरस्य न च मातरस्य दोषो न राजन, तो फिर क्या दशरथ महाराज की गलती है, उन्होंने स्वीकार ही क्यों किया, ठीक है मंथरा तो दासी थी वो माँ थी, दशरथ तो राजा है ना, बुद्धि है कि नहीं है, तो उन्होंने क्यों उनको स्वीकार किया, तो दोषो न राजन, क्यों? वो राजा है तो उनको तो न्याय करना है, वचन दिए थे वचन को पूरा करना है, उनकी क्या गलती? तो दोषो न राजन, उनके अंदर कोई दोष नहीं, अगर राजा के राजा होते हुए अपने वचनों को नहीं निभाएंगे, एक आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तो समाज में क्या होगा? तो इसलिए उनकी भी गलती नहीं है। तो दोषो न राजन, तो फिर सबने कहा फिर तो रामचंद्र जी की गलती है, स्वीकार ही क्यों किया? ठीक है राजा की नहीं है, माँ की नहीं है, तो रामचंद्र दोषो न राजन न च राघवस्य, राघव की भी कोई गलती नहीं है, क्यों? वो तो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है। दोषो न राजन न च राघवस्य, तो फिर सबने कहा फिर गलती किसकी है? मंथरा की नहीं है, कैकेयी की नहीं, दशरथ की नहीं, रामचंद्र जी की नहीं, अब और कौन बचा? तो वो कहते हैं मत पाप मासीत, मेरे पापों के कारण वनम प्रवेशे रघुनंदनस्य, भगवान श्री राम ने वन में प्रवेश किया है मेरे पापों के कारण, क्योंकि मैं ऐसा पापी पुत्र हूं जो यहां पर प्रकट हुआ कैकेयी से, और उसके कारण कैकेयी ने राज्य दिलाने के लिए रामचंद्र जी को बाहर भेज दिया, तो कोई दोषी नहीं है, मेरे पाप दोष हैं, मेरे पापों के कारण ये हुआ। ये भरत है कि कोई इनकी गलती नहीं थी, कौन कह सकता भरत की गलती? उनको तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या हुआ, वो तो जब आए तो ये भी नहीं पता था कि रामचंद्र जी चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मेरी गलती है, मेरे जैसा पापी पुत्र पैदा हुआ और इसी कारण वनम प्रवेशे रघुनंदनस्य, भगवान श्री रघुनंदन श्री राम को वन में जाना पड़ा। तो ये भाव है, तो इसलिए हमें श्रेय लेने के पीछे नहीं भागना है, हमें निंदा लेनी चाहिए, दोष अपने ऊपर लेने चाहिए। हनुमान जी कह रहे मेरे कारण सारे लोग मारे जाएंगे, तो दोष अपने ऊपर लेना चाहिए, दोष लेने से घबराना नहीं चाहिए। हम लोग सदैव दूसरे का दोष तो छोड़िए, अपना भी दोष दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं, हमारी गलती हो गई कोई आके पूछे ऐसे क्यों, क्योंकि मैंने नहीं उसने किया, एक्चुअली उसने उसकी गलती के कारण ये हुआ। ये हमारा स्वभाव है, कभी अपने दोषों को स्वीकार नहीं करते, हम दूसरे के ऊपर डालने के लिए तैयार रहते, नहीं एक्चुअली उसलिए हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए कभी भोग लेट हो गया, किसी को जाके पूछे भोग क्यों लेट हो गया, पानी नहीं था मेरी क्या गलती है? अभी सही है पानी नहीं था मेरी क्या गलती है, लेकिन व्यवस्था करनी चाहिए थी पहले से, ये हमारी गलती है। जैसे हम कल बंबई में थे तो वहाँ पर आज बहुत बड़ा उत्सव है, तो अलग अलग विभागों में, तो वहाँ इस समय पानी की बड़ी कमी चल रही है, महाराष्ट्र में बहुत कम पानी आ रहा है, तो वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, ट्रेन जा रही है पानी की, टैंकर्स भर भर के अलग अलग गांवों में पानी देने के लिए, लोग बहुत दुखी हैं पानी, महाराष्ट्र में समय सूखा पड़ा हुआ है, सारे महाराष्ट्र में वो ट्रेनों में पानी भर भर के सरकार भेज रही है। देखिए पानी कितना महत्वपूर्ण है, विशेष ट्रेनें बनाई गई हैं जिसमें टैंकर्स हैं बड़े बड़े पानी के, वो ट्रेनें जा रही हैं गाँव में, फिर वो ट्रक पे टैंकर्स आते हैं उनको भर के सब गाँव में अभी पानी बांटा जा रहा है। तो इतनी स्थिति खराब है, हमने सुना कि उसके ही कारण महाराष्ट्र में या बंबई में कुछ क्रिकेट के मैच होने वाले थे, उनको कैंसिल किया कोर्ट ने, बोला यह मैच नहीं होंगे क्योंकि मैच में बहुत सारा पानी लगता है, क्योंकि वो रोज पानी डालना पड़ता है घास को बनाए रखने के लिए, अच्छा करने के लिए, तो बहुत पानी लगता है, तो सरकार ने मना कर दिया, कोर्ट ने मना कर दिया कि मैच नहीं होंगे यहाँ, मतलब इतने पानी की। लेकिन हम कल मंदिर में थे तो वहाँ भी पानी की सब जगह प्रॉब्लम है, तो हमने देखा एक भक्त बहुत सारे ड्रम इकट्ठे कर रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि कल की तैयारी है, तो उन्होंने कहा देखो यहाँ पर बहुत सारे विभाग हैं और सब लोग अपना अपना तो करेंगे, मुझे पहले पानी भर कर रख लेना है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि समय पर भोग होना चाहिए, तो अगर पानी नहीं होगा तो मैं कहा तो मैं आज से पानी भर कर रख रहा हूँ, अपना अलग रख रहा हूँ ताकि बाद में मुझे तकलीफ ना हो। तो सुनने में थोड़ा सा ये लगा कि अरे ये तो स्वार्थ हो गया, अपना कर लूँ दूसरे, लेकिन दूसरी दृष्टि से सेवा है, वो मना नहीं करना चाहते कि मैं क्या करूं पानी नहीं था मैं समय पर भोग नहीं दे पाया, तो उन्होंने वो सोचा कि मेरी सेवा में बाधा ना हो, तो आज से उन्होंने तैयारी की। ये सही सेवा का भाव, तो उन्होंने ये नहीं, वो तो कह सकते थे मैं क्या करूं पानी नहीं है भोग नहीं मिलेगा, अब लोग भूखे बैठे रहे, एक बजे प्रसाद के लिए आए तो प्रसाद नहीं है, तो उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं, उन्होंने पहले से तैयारी की। हमें बहुत अच्छा लगा कि ये भाव होना चाहिए कि कल को उन्हें ये कहने का अवसर नहीं मिले कि मैं सेवा नहीं कर पाया क्योंकि पानी नहीं था। तो कई बार हम लोग ऐसी चीज़ों को कहते हैं, तो नहीं, दोष अपने ऊपर लेना चाहिए, हमें दूसरों पर दोष नहीं डालना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए सेवा की। हमें मालूम है कुछ होगा, तो क्योंकि हम लोग जाएंगे, अंत के समय में जाएंगे, कुछ नहीं है तो खड़े रहेंगे। तो ये व्यक्ति आज था, वो कल से तैयारी कर रहे थे कि मुझे आगे तकलीफ ना हो, तो ड्रमों में पानी भर कर वो रख रहे थे अपने विभाग के लिए। तो इस तरह से हमें जानना चाहिए कि दोष दूसरों पर ना लगाएं और अपने ऊपर लेना चाहिए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि मेरे जाने का कोई लाभ नहीं है, मैं यहीं रहता हूँ, अपने प्राण त्याग देता हूँ, या तो रावण को मार देता हूँ, उसको ले जा, अब सीता देवी चली गई हैं तो क्या करना चाहिए। तो इस तरह से वो सोच रहे थे, और फिर उस समय उन्होंने सोचा कि नहीं, श्री रामचंद्र जी ने मुझे सेवा दी है सीता को ढूंढने की, मुझे और ढूंढना चाहिए, मुझे प्राण नहीं देने चाहिए। ये देखिए महत्वपूर्ण बात, प्राण देना बहुत सरल है, प्राण दे देना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कष्ट लेते हुए भगवान की सेवा करना वो ज्यादा कठिन है। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, प्राण देना, प्राण तो मैं अभी दे सकता हूं, अग्नि जलाऊं, प्रवेश कर जाऊं, लेकिन मुझे सेवा करनी है। तो इसीलिए हमें यह जानना चाहिए कि जो भी कष्ट हमें होता है उसको हमें सहन करते हुए भगवान की सेवा करनी है। हनुमान जी सिखला रहे हैं, प्राण नहीं दिए उन्होंने अपने, प्राण देना सरल था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी मुझे और खोजना चाहिए, और ढूंढना चाहिए। तो हमें कभी सेवा छोड़नी नहीं चाहिए, कष्टों के कारण, अन्य चीजों के कारण सेवा हमारी चालू रहनी चाहिए। तो इस तरह हनुमान जी खोजते रहे, ढूंढते रहे, और ढूंढते ढूंढते अब सीता देवी के पास पहुंचे, अशोक वाटिका में पहुंचे। देखा एक वृक्ष के नीचे सीता देवी बैठी हुई हैं, बड़ी दुखी हैं, स्वाभाविक है, श्री रामचंद्र जी से विलग हैं। तो अब हनुमान जी जानना चाहते थे कि यही सीता है, क्योंकि लग तो यही रहा था राक्षसियाँ उनकी रक्षा कर रही हैं। तो उतने में रावण आया, हनुमान जी देख रहे हैं ऊपर से, और रावण ने आके सीता से कहा, सीता तुम मेरी बात मान लो। तब हनुमान जी को पता चला, अच्छा ये कन्फर्म हो गया, यही सीता। तो रावण उनको कह रहा था इत्यादि, तुम मेरी बात मान लो, ये करो वो करो इत्यादि, नहीं तो तुम्हें काट दूंगा ऐसे। तो उस समय जब उन्हें सीता मिल गई, हनुमान जी अभी तक बहुत दुखी हो रहे थे, अभी सोचा था कि प्राण त्याग दूं, लेकिन जैसे उन्हें सीता मिली, उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया, और राम का स्मरण करते ही उन्हें लगा कि वो सब बात सोचने लगे कि मैं जैसे पहुंचूंगा रामचंद्र जी क्या करेंगे, और रामचंद्र जी मुझे आलिंगन देंगे, मैं उनको ये समाचार सुनाऊंगा, वो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। और ये केवल सुन के, ये सोच के उनके हृदय में प्रसन्नता आ गई। देखिए ये भक्ति है, जिस समय अक्रूर जी वृंदावन में आए, अक्रूर जी को कंस ने कहा था, कंस ने जब बुलाया कि जाओ कृष्ण और राम को लेकर आओ, बलराम को लेकर आओ, क्योंकि मैं एक यज्ञ करूंगा और उसमें उन दोनों को मार दूंगा, अक्रूर जी को कहा। अक्रूर जी महान भक्त है, लेकिन उनको ही कहा कि जाओ लेकर आओ, मैं मारने वाला उन दोनों को यहां पर। तो फिर अक्रूर जी क्यों गए? कई बार लोग प्रश्न करते, अक्रूर जी को मालूम था कि कंस मारने वाला है, फिर लाने की क्या जरूरत थी, मना कर देते, किसी और को भेजते, बोलते मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो क्यों गए? क्योंकि वो, उनको विश्वास था भगवान है, हमको कोई मार नहीं सकता, और अच्छा था वो गए इसलिए कि वो दर्शन करना चाहते थे। तो अक्रूर जी भी जब गए हैं, तो जैसे ही वृंदावन जा रहे हैं, तो रास्ते में उनका चिंतन क्या है, वो रास्ते में चिंतन कर रहे हैं कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा वृंदावन, मुझे उसकी रज दिखाई देगी, उसमें भगवान के चरण कमल होंगे, तो मैं उसमें लौटने लगूंगा, और फिर आगे जाऊंगा, राम और बलराम और कृष्ण वहां खड़े होंगे, और फिर वो लोग मुझे आलिंगन, वो लोग मुझसे पूछेंगे आप कैसे हैं, और फिर बलराम जी को मैं आलिंगन करूंगा, ऐसे ये सब सोच रहे हैं, चिंतन। और इस चिंतन में उनको इतना हो गया कि उनको पता नहीं था कि रथ कहाँ जा रहा है। मथुरा से वृंदावन कितनी दूरी है? आज भी ज्यादा दूरी नहीं है, उस समय भी उतना नहीं था, लेकिन मथुरा से वृंदावन आते आते उनको शाम हो गई, सुबह से शाम तक रथ पे आ रहे हैं स्पीड में। हम लोग तो अभी 15 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा ज्यादा समय होगा, सुबह से शाम। क्यों? क्योंकि वो, उनको याद ही नहीं रहता था, कृष्ण के चिंतन में इतना था कि रथ कहीं और चला गया, बहुत दूर चले गए, तब पता चला अरे गलत रास्ते आ गए, चलो वापस। फिर वापस आए, सही रास्ते चलने लगे, फिर उनका कहीं मन चला गया, फिर उधर। तो ऐसे करते हुए वो पहुंचे हैं श्री कृष्ण के पास, और जैसे ही पहुंचे उन्होंने कृष्ण के चरण चिन्ह देखे, लौटने लगे, भूल गए मैं बहुत बड़ा मंत्री हूं कंस का, सारे उनके जो आभूषण थे, सारे वस्त्र थे, सब मिट्टी में हो गए, वो लौटने लगे। ये सही भाव है वृंदावन में प्रवेश करने का। वृंदावन में अहंकार से प्रवेश नहीं होता। अक्रूर जी ने दिखाया इतने बड़े मंत्री राजा के उस समय, और सारे उन्होंने आभूषण धारण किए हुए, ऐश्वर्यशाली वस्त्र पहने हुए, देखते ही लौट गए धूल में, सारी धूल लगा ली अपने ऊपर। तो इसी तरह ये चिंतन, तो जैसे ही श्री रामचंद्र जी का चिंतन हुआ, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। फिर रावण चला गया तो उसके बाद हनुमान जी सामने आए, हनुमान जी ने प्रणाम किया थोड़े समय बाद, लेकिन सीता को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सीता जानती थी रावण बड़ा मायावी है, किसी ना किसी तरीके से मुझे परेशान करने आएगा। तो जब वानर के रूप में भी आए तो उन्होंने पहचाना नहीं, उल्टा सीता देवी ने कहा कि नहीं नहीं तुम चले जाओ, मैं जानती हूँ तुम रावण हो। अब सोचिए हनुमान जी को कितना बुरा लगा होगा, वो जो इतने समय से सोचकर रामचंद्र जी की सेवा के लिए आ रहा है और उसको कहा जा रहा है तुम चले जाओ यहां से, तुम रावण हो। विदुर को भी ऐसा ही हुआ था, इतनी सेवा की हस्तिनापुर की, और क्या कहा, क्या मिला अंत में, दुर्योधन ने क्या कहा, चोर है ये जासूस है शत्रु का, बाहर निकालो इसे। कैसा लगा होगा वो सुनना उसको। तो हनुमान जी ने भी सुना, फिर हनुमान जी ने मुद्रिका दी, रामचंद्र जी ने अपनी मुद्रिका दी थी अंगूठी, तो वो जैसे ही सीता देवी ने देखी, जस्ट वो अंगूठी को देखते ही सीता देवी को वो उंगली का स्मरण हो आया जिस उंगली में वो अंगूठी पहना करते थे श्री रामचंद्र। विवाह के बाद कई वर्ष तक सीता देवी और रामचंद्र जी साथ में रहे थे, करीब 12 वर्ष के करीब साथ में रहे थे, ऐसा नहीं था कि विवाह होते ही फिर वो चले गए थे। तो उन्होंने सब, तो उनको ध्यान आया कि भगवान कौन सी उंगली में पहनते हैं, फिर वो उंगली को देखकर उनको, उंगली के बाद उनको हाथ का स्मरण हो गया श्री रामचंद्र जी का, फिर हाथ के बाद उसके शरीर का, उनके सुंदर रूप का, और सीता देवी उस अवस्था में अशोक वाटिका में रहते हुए भी बड़ी प्रसन्न हो गई, बहुत आनंद में आ गई केवल श्री राम का स्मरण करके, एक अंगूठी को देखकर। तो हनुमान जी ये गुरु के समान हैं। हनुमान जी आए थे सीधे भगवान के पास से, और उन्होंने मुद्रिका दी राम का स्मरण कराने के लिए, भौतिक अशोक वाटिका में रहते हुए भी आनंद देने के लिए। तो अशोक वाटिका या रावण की लंका ये भौतिक जगत है, सीता जीव के समान हैं, और हनुमान जी जो भगवान के पास से आते हैं संदेश लेकर वो गुरु हैं, और जो मुद्रिका है वो है महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस नाम को लेते हैं, जैसे मुद्रिका को देखा सीता देवी ने तो उनको भगवान का स्मरण हुआ है, जैसे हम इस नाम को लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को, तो हम इस भौतिक जगत में हैं, अशोक वाटिका में हैं, दुखों में हैं, कष्टों में हैं, लेकिन जब गुरु लेकर आते हैं उस नाम को, हमें प्रदान करते हैं दीक्षा के द्वारा, तो तुरंत हमारे हृदय में भी वो आनंद आता है, भक्ति का आध्यात्मिक आनंद, जिसके लिए हम काफी लंबे समय से तरस रहे हैं, जैसे सीता देवी श्री राम के लिए। तो ऐसे हनुमान जी ने उस मंत्र को दिया, और फिर उस मंत्र की शक्ति से सीता देवी बड़ी प्रसन्न हो, मंत्र तो मुद्रिका दी, ऐसे ही गुरु मंत्र देते हैं, और उस मंत्र के द्वारा हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और यही मंत्र हमें भगवान का स्मरण हृदय में कराता है, और हृदय में भगवान के स्मरण से जितना भी कलमश है दूर हो जाता है, और भगवान का स्मरण हृदय को शुद्ध करता है, इसीलिए इस नाम को सतत लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थोड़ी सी देर हो गई, ज़्यादा तो नहीं, आज वैसे भी उपवास है आप सबका। हमारी इच्छा थी 12 बजे तक बोले और फिर 12 बजे सब लोग उपवास तोड़ें, लेकिन आप सबके मुख पर प्रसन्नता को देखकर हमने सोचा कि रुक जाना चाहिए। तो शाम को अलग अलग चरित्रों का वर्णन करेंगे कि किस तरह हम अलग अलग जटायु से, शबरी से हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो आज शाम को 6:30 बजे से उत्सव प्रारंभ होगा, कृपया आप सब समय पर आइए।